बांटते।
ओम शांति। हमारे समक्ष आज डॉक्टर श्रीमन भाई उपस्थित है। आपकी विशेषता है कि अनेकों लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में ज्ञान दिया और न केवल एक लाइफस्टाइल लेकिन स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को जब अपनाते हैं तो न केवल तन तंदुरुस्त रहेगा लेकिन मन भी हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो उन दोनों का समन्वय करके जब हम चलते हैं तो हम जरूर हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी रख सकते हैं। तो इसके बारे में आज बताएंगे, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड कैसे हम रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हम फॉलो करेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्रीमन भाई।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। सबसे पहले संसार के सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त ज्ञान सरोवर का एक सुंदर प्रांगण, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी अनेक प्रकार की व्यस्तता में होते हुए भी उसमें से समय निकालकर माउंट आबू पधारे हैं, इसलिए दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है। परंतु आप सोचते होंगे कि हम तो सभी यहां आध्यात्मिक बातें सुनने आए हैं, परंतु ये हेल्थ का टॉपिक क्यों? आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि आप सभी इच्छुक हैं सुनने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित बातें कुछ सुनना पसंद है आप सभी को? अच्छा, वास्तव में अध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों का बड़ा संतुलन है, समन्वय है, दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, कनेक्शन है। अगर आप आध्यात्मिक रीति से संपूर्ण बनना चाहते हैं या जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो जीवन में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और हम आध्यात्मिक साधना भी इसलिए करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। आप सभी भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रार्थना? अच्छा, इसलिए प्रार्थना करते हैं। अक्सर करके हम सभी भगवान को यही मांगते हैं, हे प्रभु मुझे स्वास्थ्य दो, संपत्ति दो, धन दो, मांगते ना। तो स्वस्थ रहना, दुनिया में धन किसी को नहीं भी चाहिए, ऐसे भी बहुत लोग कहेंगे मुझे जरूरत नहीं है, परंतु दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा मुझे अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, है कोई? ऐसा एक भी बता दीजिए जो कहेगा कि मैं हमेशा बीमार रहना चाहता हूं, है कोई? लोगों को महल माड़ी, गाड़ी मोटरें, धन संपत्ति, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वैराग्य है, कहेंगे कि जरूरत नहीं है सब मुझे। किसी को आप 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो क्या मुझे जरूरत नहीं? लेकिन स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है? और हम सभी जीवन में कैसे स्वस्थ रहें, वो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखिए, जीवन में सभी हम भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो ताकि मैं कभी भी बीमार ना पड़ूं। मांगते हैं कभी कभी? आप सभी मांगते हैं प्रभु से, प्रार्थना करते हैं? अच्छा, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, कहते हैं सुनिए। डू यू वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम गॉड? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे सदा स्वस्थ रहना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं तुमको सिर्फ एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए संपूर्ण स्वास्थ्यवान बनाने के लिए आया हूं। तुम एक जन्म नहीं, स्वर्ग में अनेक जन्म जन्मांतर सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, निरोगी काया कंचन काया तुमको मिलेगी। क्या मेरा सुनोगे आप? हम भगवान को प्रार्थना करते आए, लेकिन अभी भगवान हमसे पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे। ऐसे भी देखिए, दुनिया में हर एक मां बाप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? स्वस्थ देखना चाहते हैं ना? कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरा बच्चा बीमार हो। तो जो भगवान हम सभी के पिता हैं, वो भी कहते हैं, मेरे बच्चे मैं तुमको सदा स्वास्थ्यवान बनाने आया हूं, सदा संपत्तिवान बनाने आया हूं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी लाइफ, एवर हैप्पी लाइफ, यही तुम्हें इसकी कला सिखाने आया हूं कि सदा जन्म जन्मांतर कैसे सदा सुखी रहो, स्वास्थ्यवान रहो, मैं बताने आया हूं। लेकिन मेरी बात सुनोगे? भगवान प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे एडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। अगर तुम आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओगे तो सदा स्वस्थ रहोगे। लेकिन हम आज जीवन से आध्यात्मिकता को अलग कर दिए हैं, जिसके कारण ही हम सभी का जीवन ऐसा हो गया है। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम मुझे भूल गए, अपने आप को भूल गए, मेरे से साथ जो तुम्हारा संबंध था उसको भी भूल गए, इस संसार में क्यों आए थे भूल गए। जैसे किसी नाटक में किसी को मान लीजिए राजा का रोल मिला है, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, ताज पहना है, क्या वो सोचता है कि ये मैं अपना घर लेके चलूंगा, ये सब लेके मेरे घर चला जाऊंगा, ऐसा सोचता है कभी? सोचता है कि ये ड्रामा स्टेज का यहां पहना हूं, ऐसा एक्टिंग कर रहा हूं, बस यहां उतार के मुझे घर चलना है। लेकिन ये संसार भी एक नाटक है, हम सभी मानते हैं, सभी कहते हैं, और यहां हम सभी एक एक एक्टर है, अभिनेता है। जो भी जिसको रोल मिला है, चाहे कोई एक कलेक्टर है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, ये हम सभी पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन हैं हम सभी आत्माएं, आए थे एक घर से, पिता परमात्मा हम सभी को खेलने के लिए यहां भेजे थे, लेकिन इधर खेलते 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 हम विस्मृत हो गए, भूल ही गए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं, मरने के बाद कहां जाएंगे, सब विस्मृत हो गए, भूल गए। और ये संसार में जो कुछ हमें मिला है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है कहने लगे, जिसके कारण ही दुखी हो गए, बंधन में फंस गए। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे मैं तुम्हें आध्यात्मिक जीवन शैली कैसे जीना है सिखाया था कल्प पहले, तुम भूल गए, जिसके कारण ही फिर दुखी हो गए, ऐसे रोगी हो गए। इसलिए फिर से परमात्मा, जो सभी वैद्यों का नाथ, आपका आत्मा का परमात्मा का लेसन हो चुका है ना, हो चुका है। तो परमात्मा कौन है, क्या नाम है बताए? शिव बाबा। तो शिव बाबा का सहस्र नाम है, हजार नाम है, सबसे नामवर शिव बाबा है। तो शिव बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे मैं सुप्रीम सर्जन हूं, इसलिए तुम मुझे वैद्यनाथ कहते हो, सभी वैद्यों का नाथ, वो हमें सदा निरोगी बनाते हैं। तो वही आके फिर से हमें शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओ। जीवन में तीन मुख्य चीजें बहुत आवश्यक है, सभी मानते हैं, क्या क्या? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सदा स्वस्थ रहना, संपत्तिवान रहना और खुश रहना, कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। परंतु इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मैं कहूंगा सबसे श्रेष्ठ चीज है हेल्थ। अगर कोई स्वास्थ्यवान है तो वो धन कमा सकता है, अगर खुद बीमार है तो धन क्या कमाएगा, जितना कमाया और उल्टा ही वो गवाएगा। अगर हम हेल्दी हैं तो वेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो हैप्पी भी हैं। जो स्वस्थ रहता है वही मुस्कुराता है, वो खुश रहता है। खुद ही बीमार है तो उसके जीवन में खुशी होगी? तो इसलिए तीनों में से सबसे प्रायोरिटी गोज टू हेल्थ। पहले जमाने में एक कहावत है, व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा मानते थे पहले जमाने में। लेकिन अभी वर्तमान समय की परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि जब स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो देखिए, सबसे पहले जो भी धन कमाया है वो सारा खर्च करेगा, फिर उसके जीवन में खुशी गायब हो जाएगी। यूफोरिया, इकोनॉमी इज लॉस्ट, यूफोरिया इज लॉस्ट। यूफोरिया मीन्स सेंस ऑफ वेलबींग, अच्छा लगना। कभी कभी आप सुने होंगे दूसरों से कि आज पता नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी वास्तव में एक बीमारी की निशानी है। तो अगर स्वास्थ्य गया तो यूफोरिया इज लॉस्ट, देन एंटरटेनमेंट इन लाइफ इज लॉस्ट। जीवन में सब खुशियां मनाते रहेंगे, मौज मनाते रहेंगे, जो बीमार व्यक्ति वो बिस्तर पर लेटा रहेगा। इस प्रकार इफर्ट इज लॉस्ट, अर्थात जो भी आध्यात्मिक साधना करना, कुछ भी मेहनत करना, साधना करना, वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार एंथुसियाज्म इज लॉस्ट, जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं रहेगा। और एंडेवर इज लॉस्ट, एंजॉयमेंट इज लॉस्ट। सभी लोग गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते रहेंगे और किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बेचारा सोचता रहेगा, देखता रहेगा। एनर्जी इज लॉस्ट, कोई बीमार हो जाता है तो एकदम कमजोर लगता है, थकान अनुभव होता है। एंड द होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट, जीवन की सारी जो खुशबू है चली जाती है। तो मैं कहूंगा व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसमें सहमत है आप सभी? सहमत है? देखिए, आपका जो सुंदर तन है, इतना सुंदर तन है, थिंक ऑफ योर वंडरफुल एंड प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी। ये एक बहुत सुंदर मशीन है। आज तक वैज्ञानिकों ने इतना सुंदर तन कभी बना नहीं सके। परंतु डू यू हैव ए मेंटेनेंस मैनुअल फॉर दिस? आज कोई भी मशीन हम खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल आता है, लेकिन आपका तन का मेंटेनेंस मैनुअल है आपके पास? अगर है तो दिखाइए, मुझे बताइए। इसलिए आज हम सभी बीमार हैं। देखिए, हम एक घर बनाते हैं, उस घर में कितना हम खर्च करते हैं, कितना उसको सजाते हैं, कितना उसको कलर लगाते हैं, फर्नीचर डालते हैं, कितना एक मकान के लिए हम कितना ना ध्यान रखते हैं। परंतु मकान में कितना समय रहते हैं हम? सवेरे से कोई ऑफिस जाता है, बिजनेस करने जाता है, हार्डली टाइम मिलता है आके थोड़े समय सोने के लिए। परंतु जो तन रूपी मकान, जो शरीर रूपी मकान, जिसमें हम जिस दिन से पैदा हुए हैं अंतिम श्वास तक, एक घंटा नहीं, एक दिन नहीं, एक मास नहीं, एक वर्ष नहीं, सारा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक उस शरीर रूपी मकान में रहते हैं, क्या उस शरीर रूपी मकान का हम इतना ध्यान रखते हैं? जितना ध्यान हम अपने जो स्थूल मकान बनाते हैं, जिसमें हम खर्च करते हैं, उसमें कलर लगाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, इतना इस शरीर का ध्यान सभी रखते हैं? पूछिए अपने आप को, वास्तव में नहीं रखते हैं। हमारे में से मैक्सिमम लोग होंगे जो 50 साल तक पैसा पैसा पैसा, आज दुनिया में यही ट्रेंड है, लोग पैसा के पीछे ही पागल है, कैसे धन कमाओ, क्योंकि धन कमाने से ही हम स्वस्थ रहेंगे, धन कमाने से ही खुशी होगी, धन कमाने से सब कुछ मिल जाएगा, धन से, ऐसा सोचते हैं। और दिन रात सब कुछ, अपना खाना पीना परिवार सब कुछ भूल के पैसा 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 पैसा। और 50 साल के बाद अचानक हार्ट अटैक हो गया, आईसीयू में दाखिल होकर जितना पैसा कमाया था 2-4 दिन में ही गया सब। इसको बुद्धिमान कहेंगे? सोचिए, आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे ऐसे हमारे पास हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में आते हैं लोग रिटायर्ड एज में मां बाप दोनों हाईली एजुकेटेड, बच्चे भी एजुकेटेड, परंतु रिटायर्ड एज में मां बाप को बच्चे ऐसे पिटाई कर रहे हैं, ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं और ड्रग एडिक्ट, सब प्रकार के बुरी व्यसनों की आदतें, जितना भी पैसा है बर्बाद कर रहे हैं। आके रो रो के कहते हैं हमारे बच्चों को, थोड़ा आप मेडिटेशन सिखाइए इनको, थोड़ा और कुछ दिग्दर्शन दीजिए। आप सोचिए तो सही, रिटायर्ड एज में अगर बच्चे मां बाप को मारते हैं तो कैसा लगता होगा, आप सोचिए। क्या कारण है? हम बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन सवेरे से लेकर रात्रि तक मां बाप दोनों नौकरी करने गए, बच्चों को कौन देखभाल करता है? घर में जो नौकर चाकर आया भाई, क्या सिखाएगा? बच्चों को बड़े होने तक कुछ भी ना प्यार दिए, ना उनको शिक्षा दिए, ना कुछ, समय नहीं है, क्या होगा, आप सोचिए। तो आज वास्तव में हम सभी का जीवन शैली कुछ बहुत बदल चुकी है, जिसके कारण समाज की ये परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो देखिए, सभी चाहते हैं स्वस्थ रहें, लेकिन स्वास्थ्य क्या चीज है, आज वास्तव में बहुत लोगों को अनेक प्रकार की गलतफहमी है। हमारे पास बहुत मोटे मोटे लोग आते हैं, मैं पूछता हूं भाई आप इतने मोटे हैं, कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं तो और हेल्दी था, अभी तो थोड़ा पतला हो गया। अर्थात मोटा होना हेल्दी है, हेल्दी की निशानी है। तो आम व्यक्ति सोचता है जो जितना मोटा है उतना स्वास्थ्यवान है, उतना हेल्दी है, हेल्थ की परिभाषा ऐसे सोचते हैं। परंतु वास्तव में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्थान, वो हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं? हेल्थ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात किसी व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य अगर है, खाली शारीरिक बीमारी न होना वास्तव में इसको स्वास्थ्य कहना नहीं है। संपूर्ण रीति से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रीति से अगर स्वास्थ्यवान है तो संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे। ये WHO का मानना है, विश्व स्वास्थ्य संस्थान का मानना है। और हम शारीरिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति देखने के लिए उसका हाथ पांव ठीक है और उसके वजन सही है, उसका ब्लड प्रेशर सही है, उसको कोई बुखार ना हो, अच्छा भोजन करता होगा, उसको डाइजेशन ठीक होता हो, नींद अच्छा करता हो, भाग दौड़ करके सब काम करता हो, तो उसको हम शारीरिक रीति से स्वास्थ्यवान मानते हैं। परंतु शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा है कि जैसे कि बर्फ, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़े, पहाड़ सब समुन्द्र में तैरते रहते हैं और उनके बहुत थोड़ा सा टुकड़ा ही ऊपर दिखता है और मेजोरिटी तो पानी के अंदर ही सबमर्ज रहता है। तो इसी प्रकार किसी को बाहर शारीरिक रूप में देख के वो हेल्दी समझना, वास्तव में ये गलत फहमी है। किसी व्यक्ति अगर बाहर से खाली सुंदर दिखता है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे उसके नाक है, कान है और उसके शरीर ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो संपूर्ण स्वास्थ्यवान है। साथ साथ मेंटली भी हेल्दी होना जरूरी है, मानसिक रीति से भी स्वास्थ्यवान होना जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति अपना परिवार का और समाज का उत्तरदायित्व को अच्छी रीति से भलीभांति संभालता है और साथ में सारे दिन में सबके साथ जब कार्य व्यवहार में आता है, सबके साथ इमोशनली वो बैलेंस स्टेट मेंटेन करते हुए सबके साथ प्यार प्रेम से व्यवहार करता है, कभी उसका मूड स्विंग ना हो, अर्थात कभी एकदम एग्रेसिव हो जाए, कभी एकदम डिप्रेस हो जाए, कभी टेंशन में आ जाए, कभी गुस्सा करे, उसको मानसिक रीति से स्वास्थ्यवान नहीं कहेंगे। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक रीति से अनहेल्दी तो है ही, लेकिन मानसिक रीति से अधिकांश लोग बीमार हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको टेंशन है, स्ट्रेस है, अधिकांश लोग बीमार हैं। तो मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में सबके साथ मिलजुल के रहें, सबको सहयोग दें, सबसे सहयोग लें, बच्चे बूढ़े सभी को, और पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें, अर्थात जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां गंदा ना करें। कई लोग क्या करते हैं, सारे मकान का जो भी किचरा सब रास्ते पे, रास्ता कौन साफ करेगा, कौन करेगा? जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं हम उसको बिल्कुल एकदम प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती है, तो वास्तव में वो सामाजिक रीति से उसको स्वास्थ्यवान नहीं कहेंगे। तो हमारे सभी का, समाज का भी उत्तरदायित्व है, उसको भी निभाना जरूरी है। परंतु और एक डायमेंशन है, द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, जिसके बारे में कोई नहीं जानते हैं, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ किसे कहा जाता है? व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? वो बातें आप सभी सीखेंगे यहां। आज मेरा ये अनुभव है, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं हजारों संख्या में, उनको पूछा हूं कि कैन यू डिफाइन व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, आपको आश्चर्य लगेगा किसी को भी पता नहीं है व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। जो इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आप सुनेंगे समझेंगे। वास्तव में आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? हम सभी एक एक आत्मा हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। खुद को आत्मा समझते हुए संसार के सभी मनुष्य आत्माओं को, इनको भी आत्मिक रूप में देखना, संबंध में आना, व्यवहार में आना। हम हैं पंछी एक डाल के, हम सभी एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई ये संसार में आके अभिनय कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं हैं, ये संसार एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी भावना रखते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, ऐसी भावना रखते हुए समग्र विश्व का कल्याण की भावना रखते हुए पिता परमात्मा की स्मृति में रहना, अर्थात आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ रहना। तो देखिए, आज दुनिया में ना आत्मा को लोग जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना ये समग्र विश्व कैसा एक कुटुंब है, ना उसकी भावना है, तो कैसे आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ रहेंगे? इसलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म के बारे में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण कितने मारा मारी दंगा हंगामा चल रहा है आप देख रहे हो। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जीवन में बहुत जरूरी है। परंतु व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? वास्तव में स्वास्थ्य शब्द दो शब्द से आया है, स्व प्लस स्थ। स्वस्थिति में स्थित रहना ही वास्तव में स्वस्थ होना है। व्हाट इज स्वस्थिति? आप सभी को बताया गया होगा आत्मा के कितने प्रकार के गुण है। आत्मा के सात कौन से गुण है? आत्मा के दो प्रकार के गुण है, आत्मा के दो प्रकार के गुण है। क्या बताया गया, एनीबॉडी भाइयों में से कोई बताए? अच्छा, और कोई आंसर? आत्मा के वो शक्तियां मन बुद्धि, दो प्रकार के गुण है। यस, किसने बताया? अनादि गुण और आदि गुण। अनादि गुण क्या है? जो आत्मा का निजी गुण है, मूल गुण है। हम साइंस में पढ़ते हैं कि जैसे चुंबक का निजी गुण, जितने भी हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज होते हैं, तो मौलिक गुण है, निजी धर्म है, निजी गुण है। तो आत्मा का जो निजी गुण है उसको ही वास्तव में अनादि गुण कहते हैं। और वो सभी ये सात गुण है, क्या क्या? ज्ञान, पवित्रता, और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सात मौलिक गुण है। परंतु आदि गुण किसे कहा जाता है? एनीबॉडी, आदि गुण किसे कहा जाता है? ये तो अनादि गुण है, इनहेरेंट परमानेंट क्वालिटीज। जब हम संसार में पहली बार अवतरित होते हैं सत्युग में, हम सभी के जो गुण होते हैं उसको दैवी गुण व आदि गुण कहा जाता है, व डिवाइन वर्च्यूज कहा जाता है। वो कितने हैं? कम से कम 36 है, कम से कम 36 है। आप यहां, हमारे बहुत जगह है जहां आप देखेंगे लिखा रहता है वो डिवाइन वर्च्यूज। आप मधुबन जाएंगे, पांडव भवन, वहां एक बोर्ड रखा है। उसमें सारा 36 गुण, कई डायरीज भी है उसमें लिखा रहता है। जो हम देवता होके सतयुग में पहली बार उतरते हैं लक्ष्मी नारायण होके, जो हमारे अंदर जो गुण थे जैसे अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, निष्पक्षता, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, विवेकशील, रहमदिल, शुभ भावना, शालीनता, सत्यता, सत्कार, संतुष्टता, सहनशीलता, सहयोग, समर्पण, स्वच्छता, सादगी, साहस, हर्षित मुखता, हल्कापन, कितने सारे गुण है। तो इतने गुण हमारे पास थे कि हम धीरे 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 भूल ही गए, जिसके कारण हम सभी एक एक अवगुण के खान बन गए, जिसके कारण ही ये दुख, अशांति, रोग, शोक, पीड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा, आलस, ये सब नेगेटिव गुण है। जैसे रोशनी चली जाती है तो क्या होता है, अंधकार आ जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन से ये सब गुण जब हम खो बैठे तो इसके अभाव में हमारे अंदर ये सब नेगेटिविटीज आ गए, जिसके कारण आज हमारी ये दुरावस्था है। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे ये जो आदि गुण, मूल गुण, निजी गुण है, ये निजी गुण में स्थित रहना ही स्वस्थिति में स्थित रहना, जिसको कहते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति। तो हम जब ये गुण को खो बैठे तो ही अस्वस्थ बने। तो बता रहा था ये सात आत्मा के निजी गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। आत्मा जब ये सातों गुणों में 100% फुल हो जाती है तब आत्मा की सतोगुणी अवस्था कहा जाता है, सात गुण से सतोगुणी अवस्था। तो जब देवता जीवन में हम होते हैं संसार में तब आत्मा की सतोगुणी स्थिति होती है, उस समय हम संपूर्ण स्वास्थ्यवान होते हैं। और जब आत्मा 100% ये सातों गुणों में संपन्न होती है तब देखिए, जब हम नॉलेजफुल हो जाते हैं, हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम है इसमें नर्वस सिस्टम भी एकदम बहुत अच्छी रीति से काम करती है। आज उदाहरण के रूप में हमारी दादी जानकी सामने हमारे है, शी इज 95 ईयर्स ओल्ड और अभी भी पिछले 50-60 साल की बातें ऐसे स्पष्ट सुनाती जैसे कि कल की बात है। उनको इतनी याद है, अभी तक भी देखिए वो लाठी नहीं पकड़ती है और सीढ़ियां चढ़ के जाती है, एकदम उनकी नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव, इतना शार्प की बात मत पूछिए। जो ज्ञान का मनन चिंतन करता है वही वास्तव में तंदुरुस्त रहता है, उसके नर्वस सिस्टम बहुत ही सुंदर एकदम रहते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है, आज भी अगर जो बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, आज की मुरली में आप सुनिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो विचार सागर मंथन करो। ज्ञान का जो जितना मंथन करता है उसके नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन बहुत एक्टिवेट होकर रहता है। इसी प्रकार प्योरिटी, जो पवित्रता जीवन में धारण करते हैं, उनके जो पांच सेंस ऑर्गन्स हैं वो पांच सेंस ऑर्गन्स बहुत सुंदर हो जाते हैं। और जो पीसफुल है, जो बहुत शांतिमय है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। जब हम अशांत होते हैं एकदम हांफने लगते हैं, सांस ये होने लगता है, लेकिन अगर हम शांत हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत सुंदर कार्य करती है। और जो लवफुल है, प्रेम स्वरूप है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सुंदर ही होता है, लेकिन इसलिए दिल के साथ प्रेम को जुड़ा गया है। और जो बहुत, जिसकी स्थिति बहुत सुखमय होता है, खुशी में रहता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सुंदर हो जाता है। टेंशन होता है, वरीज होता है तो देखना एसिडिटी होती है, फिर अल्सर होता है, लोगों को कई प्रकार की समस्या होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। और जो बहुत आनंदमय स्थिति में रहता है उसका बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसके एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत सुंदर हो जाता है, बॉडी रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। खुशी में रहना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, आनंद में रहना। और जो आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है वो शारीरिक शक्ति, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो देखिए, जब आत्मा अपने निजी सात गुणों में संपन्न हो जाती है तो ये शरीर के सारे सिस्टम, ऑलमोस्ट सारे सिस्टम भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मोर देन 90% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, दे स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पहले तन को ठीक करेंगे कि पहले मन को ठीक करेंगे, पहले आत्मा को ठीक करेंगे कि तन को ठीक करेंगे? जिसका आत्मा ठीक है तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर एक मूर्ति बहुत सुंदर मूल्यवान है उसका मंदिर ऑटोमेटिकली ऐसा सुंदर होगा। अगर आप एक डायमंड का कुछ जेवर खरीदते हैं तो उसका डिब्बी जो होगा वो भी सोने का होगा डेफिनेटली। अगर इमिटेशन खरीदते हैं तो प्लास्टिक के डिब्बे में देगा, है ना जी। तो इसलिए जिसका आत्मा जितना श्रेष्ठ है तन भी उतना श्रेष्ठ हो जाता है। और स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशियल हेल्थ। अगर कोई आध्यात्मिक रीति से स्वस्थवान हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका मानसिक रीति से शारीरिक रीति से और जिस समाज में रहेगा उस समाज का भी वो भला करेगा डेफिनेटली। तो डू यू फील दैट स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन। जो समझते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबसे मुख्य है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कोई अगर स्वस्थवान हो गया तो उसका मानसिक शारीरिक सामाजिक ठीक होगा, वो हाथ उठाए। वाह, सभी सहमत है पक्का। तो हमें एक एक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक रीति से स्वस्थवान हो गए तो ऑटोमेटिकली भी मन दुरुस्त तन दुरुस्त जिस समाज में रहेंगे उसका भी भला हुआ ही पड़ा है, ठीक है ना नहीं। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द की। जीवन में संपूर्ण स्वस्थवान रहना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द की, ये कुंजी है। और लाइफ इज कलरफुल व्हेन यू आर हेल्दी। जीवन में तभी रंग आता है जब हम स्वस्थवान रहते हैं। जीवन में अगर स्वस्थ नहीं है सब कुछ होते हुए भी सब बेकार लगेगा, फीका लगेगा, जीवन नीरस लगेगी। परंतु लोग क्यों बीमार हो गए, व्हाट इज द कॉज, क्या कारण है, क्यों बीमार हो गए, क्यों बीमार हो गए, देख रहे हैं क्यों बीमार हो गए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है वो अनहेल्दी हो गई है। देख रहे हैं यहां साधु बाबा है क्या कर रहे हैं और ये हाथ में क्या है देख रहे हैं। और अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट, आज मनुष्य कहां सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं आप देख रहे, देख लीजिए। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बोथ एक्सेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। जो ज्यादा सोता है या कम सोता है उसको ही ये सारी बीमारियां होती है जो आज सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैल रही है ये। और भारतवर्ष ये सब बीमारियों की राजधानी है, कैपिटल है। और आप अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़े हैं भगवान कहते हैं हे अर्जुन अति निद्रा अनिद्रा ये योगी का लक्षण नहीं है। ज्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना ये योगी का लक्षण नहीं है। इस प्रकार अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, आज मनुष्य क्या क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी जंक फूड फास्ट फूड क्या क्या खा रहे हैं आप सोच नहीं सकते हो, जिसके कारण ही हम सभी आज बीमार हैं। तो ये सब चीजें, ये बर्गर, ये डोनट और ये सब फ्रेंच फ्राइज, ये चिप्स, कचौरी, समोसा, ये सब नॉन वेज चीजें, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें आज खा के हम सभी बीमार हैं। आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है और उसमें कभी आप डीजल डाल रहे हैं, कभी किरोसिन डाल रहे हैं, कभी पानी डाल रहे हैं, क्या होगा। तो बायोलॉजिकली मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य एक वेजिटेरियन एनिमल है, एक हर्बीवोरस एनिमल है। हम सभी शाकाहारी हैं परंतु इसके अंदर हम क्या क्या गंदगी डाल रहे हैं तो क्या होगा, हम बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। यहां ऑनेस्टली अगर कहेंगे हाथ खड़ा करेंगे तो मैं पूछूंगा, ऑनेस्टली सभी हाथ खड़ा करेंगे जो मैं पूछूंगा, जो नॉनवेज खाते हैं हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, जो खाते हैं। थैंक यू, आप सभी सच्चा जो सच सच बोले इसलिए बहुत धन्यवाद। परंतु आप सोचिए हम जो भी जानवर को काट के खाते हैं मांस आदि, वो बेचारे कमजोर हैं मनुष्य से। एक बकरी है या एक मुर्गा है हम घर में रखते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनके लिए रेस्ट सेट बनाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो उनको हम एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करके दवाई भी करते हैं, लेकिन एक दिन उसको हम मार के खा जाते हैं। सोचिए तो सही, क्या ये ह्यूमैनिटी है। हमारे बच्चे को भी कोई अगर किसी के पास कोई किसी के घर में रखे, उसको खिलाए पिलाए और एक दिन उसको मार के खा जाए, हम कैसा लगेगा? और कभी जब एक जानवर को मारा जाता है, आप देखिए बेचारा अपने को बचाने के लिए कितना चिल्लाता है, कितना धार धार आंसू बहता रहता है वो बचाने के लिए, अपने को सेव करने के लिए। और वो अपने को बचाने के लिए अंदर की जितनी सारी टॉक्सिन्स है, पॉइजन है, वो सिक्रीट करता है, वो सब ब्लड में सर्कुलेट होकर सारे मसल्स में डिपॉजिट होते हैं। और जब उसको खाते हैं हम, वो सारे टॉक्सिन्स कहां जाएंगे बताइए? हमारे शरीर में जाएंगे ना? नहीं। तो वास्तव में ये मानवीयता नहीं है हम किसी को मार के खा जाएं। और देखिए हमारे बायोलॉजिकली हमारे बड़े बड़े दांत नहीं है, बड़े बड़े पंजे नहीं है, हमारे जो अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो अंत्र नलियां है, वो भी बहुत लंबे हैं, क्योंकि ये प्लांट्स वेजिटेबल्स आदि को डाइजेस्ट करने के लिए। आप एक शेर को या बाघ को काटिए, उसका पेट मार के देखिए, खोलिए देखिए, उसके जो आंतड़ी होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन एक जो घास खाने वाला जानवर है उसको काट के देखिए, उसकी आंतड़ी बहुत लंबी होती है। तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, वेजिटेरियन एनिमल है। तो इसलिए हमें जो खाना चाहिए, जब हम नहीं खाते हैं, आज वैज्ञानिक लोग खुद ही बता रहे हैं कि वास्तव में नॉन वेजिटेरियन डाइट हमारा वास्तव में खाने का जरूरत नहीं है। मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं बचपन से मैं एक दिन भी नॉन वेज टच नहीं किया, मेरा क्या कमी हो गई आप बताइए? आज संसार में जितने भी महापुरुष, जो भी नेम एनीबॉडी, कोई भी महापुरुष आप उनका नाम बताइए, सभी शाकाहारी रहे हैं। जीवन में जरूरत नहीं है, और किसी को मारना वास्तव में ये तो ठीक नहीं है, इट इज नॉट ह्यूमैनिटी। तो मेरा कहने का मतलब, ये सब चीजें हम खा के आज बीमार हैं। और अनहेल्दी डाइट, वास्तव में हमारा हेल्दी डाइट कैसा होना चाहिए? हमारे थाली में 50% साग सब्जियां फ्रूट्स आदि होना चाहिए, 25% चावल चपाती आदि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% प्रोटीन्स दाल आदि होने चाहिए, फलियां आदि होने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स आदि होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या क्या खा रहे हैं, जो चीजें नहीं खानी चाहिए। और इसी प्रकार आज वास्तव में इतने सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बन चुका है हमारे पास। पहले जमाने में तो सीजनल फ्रूट्स मिलता था, आजकल तो जब चाहो जो चाहो मिलता है, कभी भी कोई भी सीजन में कुछ भी आप देखो मिलता है। परंतु हम ऐसी चीजें खा खा के क्या बन गए आप देख लीजिए। हमारे बच्चे भी सब टीवी देखते देखते जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें खा के क्या हाल हो गया आप देख लीजिए। तो अवॉइड फिस्टिंग एंड फास्टिंग, जीवन में दो चीजें नहीं करनी है। कभी मिला तो एकदम आकंठ भोजन कर लिया, खा लिया, और कभी तो बिल्कुल नहीं खाना, फास्टिंग करना। जो यहां उपवास करते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए, फास्टिंग करते हैं, देखिए बहुत भाई बहने करते हैं। वास्तव में फास्टिंग करना ठीक नहीं है, मैं साइंटिफिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं। क्यों? देखिए जिस दिन आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं आपको अच्छा लगता है बताइए? जिस दिन आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं उस दिन आपको अच्छा लगता है? तो हम कौन है? भगवान के कौन है? भगवान के बच्चे हैं ना। तो जिस दिन हम नहीं खाएंगे भगवान को अच्छा लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा बताइए? तो वास्तव में भगवान कहते हैं उपवास नहीं करना है। आप गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, योगी अर्थात संतुलित जीवन वाले। एक सुंदर एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक पंडित थे, बहुत कथा करते थे। तो एक दिन कहीं कथा करके आए, अच्छा भोजन था, उनकी जिज्ञासु सब खिलाए, उनको खा के आए। रात को काफी पेट में दर्द हुआ तो क्या करें, सहन नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर कुछ डाइजेस्टिव कैप्सूल लिख दिए, कहते कि खा लो, दो कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाएगा पेट दर्द। कहते हैं डॉक्टर साहब ये दो कैप्सूल खाने का जगह होता तो दो गुलाब जामुन नहीं खा लेता। तो कहने का मतलब हम इतना ही नहीं खाए हैं जो एकदम इंडाइजेशन हो जाए, ये हो जाए। योगी अर्थात संतुलित भोजन वाले। तो हमारे जीवन शैली में वास्तव में देखा गया कि पुअर हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक टू द डाइट एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे सोच विचार, हमारे आचार व्यवहार, चाल चलन, सब कुछ बदल गया है, जिसके कारण ही आज हम बीमार हैं। टू लेंथन thy लाइफ lessen thy मील। कोई अगर बहुत स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो कम भोजन कीजिए। कम भोजन करने से कोई बीमार नहीं होता है, ज्यादा खाके ही लोग बीमार होते हैं। और वी हैव चेंज आवर लाइफ स्टाइल। पहले जमाने में खूब मेहनत करते थे हम, भागम दौड़ी, साइकिल में जाना, ये करना वो करना, लेकिन आजकल हम आलसू हो गए हैं, सिडेंटरी हो गए हैं, कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। और आप यहां दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये मकड़ी का जाल लगा हुआ है, तो उसको भी साफ करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। आजकल हम सभी सिडेंटरी हो गए हैं, हमारे कुर्सी में भी पहिया लग गया है। अगर कहीं ऑफिस में उधर फाइल है तो उठ के जाके फाइल नहीं लाना है, और कुर्सी के साथ घर करके जाएंगे, घर करके आएंगे। ये हाल हो गया है हमारे। और हम बैठे बैठे रिमोट से लैपटॉप, मोटर कार, ये सब चीजें निकल गई है, वैज्ञानिक साधन। पहले जमाने में लोग कितना दूर भी चल के जाते थे, कुछ भी करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज हम इतना दूर भी चल के जाने के लिए नाराज हैं, नहीं जाएंगे कहीं भी, गाड़ी मोटर चाहिए। तो जिसके परिणाम ही हम सभी बीमार हो गए हैं। ये सब साइंटिफिक इन्वेंशन से ये सब चीजें हमें दिया है, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत आलसू हो गए हैं। आप कोई गाड़ी को खरीद के अगर चलाएंगे नहीं, चुपचाप रख देंगे, क्या होगा? गैरेज में एक साल तक ऐसे ही रख दिए, क्या होगा? ऐसे ही ये शरीर को जितना आप एक्टिव रखेंगे, मोबिलाइज करेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन आज ये वैज्ञानिक साधन से हम सभी आलसू हो गए हैं। 24 घंटा टीवी चैनल्स खोल के, जिस दिन संडे हैं बस, उस दिन तो और कुछ नहीं कि क्रिकेट मैच का सीजन चला, बस 24 घंटा खाली टीवी देखते रहो। पहले जमाने में हमारे घर में कोई आता था तो हम दुख सुख होते थे, पूछते थे कैसे आए हो, क्या है। आजकल कोई आता है तो मैं भी इडियट बॉक्स देख रहा हूं, तुम भी बैठो इडियट बॉक्स देखो। पहले जमाने में किसके घर में कोई आता था तो दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। आजकल कोई आए तो स्टेटस का सिंबल कोल्ड ड्रिंक, तुम भी पियो और बीमार हो। कोल्ड ड्रिंक्स में ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, आप कभी भी देखिए, नेट ढूंढिए, इंटरनेट में आप पढ़े कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है। ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं सारे स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें, पॉइजन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, जो खा के हम बीमार होना ही सार होगा। उसमें कुछ भी नहीं है, 50 पैसा की भी चीज नहीं होगी, लेकिन इतना पैसा वो लोग लूट के ले रहे हैं। और हम उसको स्टेटस का सिंबल देखते हैं और खुद भी पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते रहते हैं। ये सब चीजें ही हमें बीमार कर चुके हैं। आज घर में, घर घर में बहुत प्रकार के, माताओं को बहुत सुविधा हो गई है। पहले जमाने में कपड़े भी धोते थे, आजकल बटन दबाओ घर हो गया। पहले जमाने में कम से कम कपड़े सुखाते थे, हाथ तो ऐसा होता था, आजकल वो भी सुखाना भी नहीं है, वो भी घर कर दिया तो सूख गया। तो फिर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही नहीं उठता है, उठेगा कैसे? कभी जिंदगी में ऊपर उठाया नहीं हाथ। तो जिसके कारण ही हम बीमार हैं, ये सब चीजें यूज करके करो यूज, परंतु शरीर को कैसे स्वस्थ रखें वो जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। और पहले तो हम स्ट्रेस फ्री थे, बहुत सुंदर खुशी का जीवन था, लेकिन आज इतना सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशी किसी के जीवन में नहीं है। जिसके देखो टेंशन ही टेंशन। मुझे छोटे छोटे बच्चों को देख के तो दया आती है। हम स्कूल में पहले जाते थे तो 2-3-4 किताब होता था बस, आजकल के बच्चों को इतना सारी किताब पीठ में, जैसे वो मजदूर लोग होते हैं, वो चीनी का बोरी, आलू का बोरी लेके जैसे ऐसे ऐसे के उठा के जैसे लेते हैं। आप स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हुए आप वो सीधा खड़े ही नहीं हो पाते। तो आज दुनिया में सभी का जीवन एकदम फुल ऑफ टेंशन हो गया है, ओवर वर्कलोड, हरी वरी करी, ये सब चीजें, और कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, गोल्स, ये सब चीजें ही बीमारी की निशानी है। और ये सब अनहेल्दी चीजें, शराब आदि पी के आज ये स्टेटस समझते हैं लोग। पहले तो आदमी शराब को पीता है, बाद में बोतल, पहले आदमी बोतल को पीता है, बाद में बोतल आदमी को पीता है। और सारे जो भी एक्सीडेंट्स हैं आज संसार में, जो भी चीजें हो रहा है, ये सब इसके ही कारण है। इसी प्रकार ये सब एडिक्ट, देखिए पहले आदमी सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट आदमी को पीता है। जो चीजें हमें एडिक्शन करते हैं, ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, चाहे वो चाय हो चाहे ये कॉफी हो। क्योंकि आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे देश में 200 साल पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, चाय क्या चीज है हमें पता नहीं था। और हमारे देश में प्याज लहसुन कांदा लहसुन आदि कोई नहीं खाते थे। आज तक भी मंदिरों में जाइए, हमारे मंदिरों में कोई ये प्याज लहसुन देते हैं? आप अभी भी नॉर्थ इंडिया जाइए, जो वैष्णव देवी आदि आदि मंदिर है, वहां होटलों में, आसपास होटलों में भी अगर आप प्याज मांगेंगे तो आपको देखेंगे कहां से एक असुर आ गया। तो हमारे देश में ये सब नहीं था, लेकिन विदेशी लोग जब भारत में आए ये सब सिस्टम बना दिए, और ये सब के हम आदती होके खा के आज बीमार हैं हम सभी। तो अनहेल्दी सराउंडिंग्स, हम आपस में इतने सारे ये सब इंडस्ट्री ये सब करके आज ये वातावरण को भी प्रदूषित कर दिए हैं, इसके कारण दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब चीजें हो रहे हैं। जहां भी रास्ते देखो, नदी नाले देखो, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, जिसके कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा रिलेशन, आज दुनिया में हमारा रिलेशन खराब हो चुका है। मैं ये कौन है पूछते हैं तो मैं कहता हूं ये कलयुग के लक्ष्मी नारायण है, उसका थोड़ा उधर इसका थोड़ा इधर। और घर घर में क्या समस्या है आप देख रहे हो, तो हम सभी का संबंध बिगड़ चुका है। आज विदेश में लोगों के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं है, जो हमारे देश में अभी तक भी है। कहीं कहीं हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को ब्लाइंडली फॉलो करते करते आज हमारे भी ऐसे हालत हो चुके हैं। लेकिन आज तक भी जाइए, बहुत सारे परिवार में सब मिलजुल के प्रेम प्यार से आज भी रहते हैं। इसलिए लोग लाखों रुपया खर्च करके हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, भारत की सभ्यता सीखे, और हम सभी हमारी सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण कर रहे हैं। तो ये सब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नेगेटिविटीज, ये सब बीमारियों का जड़ है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का जड़ है। और आज 20% चिल्ड्रेन एंड 65% एडल्ट्स आर ओवरवेट इन अमेरिका। अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या की मोटापा, सब लोग मोटे होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, चिंता का विषय। ऐसे ऐसे लोग भी आप देखेंगे अमेरिका में, कितना किलो हो गए जानते हैं? 300 किलो 400 किलो लोग भी उधर है। बहने बहुत खुश हो रहे हैं, सोचते हैं कि खाली भाई लोग ऐसे हैं, नहीं, वहां बहने भी ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे भारतवर्ष में भी ये बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, ये सबसे स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन इनकी भी हालत क्या है। 1990 में हमारा टीवी सेट ऐसा था, टीवी सेट कंप्यूटर ऐसा था, हम लोग ऐसे थे, और 2011 में ऐसा हो गया, टीवी तो ऐसा हो गया, हम लोग ऐसे बन गए। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि लोग मोटे होते जा रहे हैं, जिसके कारण ही आपको आश्चर्य लगेगा, माउंट आबू छोटा सा जगह है, यहां हमारा हॉस्पिटल में हर महीना 10-15 लोगों का हम घुटना चेंज करते हैं, क्योंकि इतने मोटे हैं ये बेचारा, दोनों घुटने घिस जाते हैं, चल नहीं पाते, इतना दर्द होता है कि फिर हमें स्टील का चेंज करना पड़ता है। लोग मोटे होके ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब प्रकार की बीमारियों का जड़ मोटापा है। तो भारत में देखा गया कि ये सब साइंटिस्ट ने देखा है, किसी व्यक्ति का अगर 10 किलो भी वजन बढ़ जाता है तो उसके हार्ट को कम से कम 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। अगर 10 किलो बॉडी वेट किसका ज्यादा होता है तो सारे दिन में उसको हार्ट को 1000 लीटर एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। तो हार्ट का क्या अवस्था होगी आप सोच लीजिए बेचारा। तो ग्रेटर दी वेस्ट लाइन, शॉर्टर दी लाइफ लाइन, जिसका जितना ये बेल्ट लंबा है, द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ। और आज ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये पेट है कि मटका है, तो हम कहते हैं जब पेट बन जाता है मटका, स्वास्थ्य को लगता है झटका। तो ये ऐसा पेट बढ़ना, लोग कहते हैं हम खाने पीने के घर के हैं इसलिए ऐसे हैं, खाने पीने वाले हैं, तो वास्तव में ये समृद्धि की निशानी नहीं है। इसी में ही ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज सारी है। हमारे पेट के अंदर एक चर्बी है जिसको विसेरल फैट कहते हैं, वही सारी बीमारियों का जड़ है। और इसलिए हम सभी को वास्तव में हमारे खान पान को चेंज करने की आवश्यकता है। चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफ। जितना हो सके साग सब्जियां फल फूल ये सब खाने चाहिए, ये सब जंक फूड फास्ट फूड बटर मक्खन जिसमें ज्यादा एकदम कैलोरीज है ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। और मैं कहता हूं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। एक समय था लोग कहते थे कि रोज खाओ अंडे, परंतु इसमें इतने कोलेस्ट्रॉल है और लेसिथिन है, यही आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं यही सारी बीमारियों का जड़ है, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज्जा पकवान पराठा सिक्स पीस अगर कोई पतले होना चाहते हैं तो ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आप कैसे कहते आप कैसे डॉक्टर हैं, ये सब क्या फिर गाय भैंस खाएंगे हमारे लिए नहीं बनाया हुआ? तो खाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन कभी कभी वंस इन अ व्हाइल कभी महीने में एक दिन खाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन ये खाते हैं फिर बाकी दूसरी चीज नहीं खाना चाहिए। हम रोज जो खाते हैं उस दिन उसको त्याग करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो चावल चपाती सब्जियां जो रोज खाते हैं वो भी खाएंगे लेकिन ये भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं दोनों, जिसके कारण ही आज मोटे होते जा रहे हैं। तो ये सब हॉट डॉग्स दे किल 70 चिल्ड्रन एनुअली अमेरिका में, और ये सब चिप्स आदि मैं आपको एक्चुअली ये है बहुत लेट हो गया है नहीं तो आपको दिखा सकता कि एक चिप को जलाने से, मैं यहां कई बार दिखाया हूं, सिर्फ एक चिप जलाइए उसमें से थप 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 20-30 बूंदे तेल निकलते हैं एक चिप से सिर्फ। अब जब कोई खाता है कितना चिप खाता है, एक दो खाता है, तो सोचिए लोग कहते हैं हम नहीं डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं खाते हैं ऐसे ही मोटे हैं हमारा हेरिडिटरी मोटापा है। नहीं, हेरिडिटरी नहीं होता है। और मोटापा के कारण 30,000 पीपुल दे डाई इन अमेरिका खाली मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस के कारण। इसलिए कीप फिट विथ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, रोज हमें काम करना चाहिए। विदेश में तो लोगों के पास फिर भी नौकर चाकर नहीं है, भारत में अभी भी वो सिस्टम है, हम घर का काम नहीं करना स्टार्टअप समझते हैं, लेकिन घर का काम करना है, हम सफाई करें कपड़े बर्तन आदि खुद करें मेहनत करें उससे ही हम स्वस्थ रहेंगे। और साथ साथ तीन प्रकार के एक्सरसाइज हम बताते हैं, एरोबिक एनारोबिक और योगासन। एरोबिक क्या है, चलना साइकिलिंग करना ये सब करना कूदना ये सब जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है उसको हम एरोबिक कहते हैं। एनारोबिक क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लोग जाके जिम खाना में हेल्थ क्लब में जो वजन उठाते हैं उसको एनारोबिक कहते हैं। और योगासन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज रामदेव बाबा सबको सिखा रहे हैं सब, ये भी अच्छा है, परंतु मैं पूछता हूं ये सब चीजें कितने लोग कर पाएंगे? आप माताएं बहनें ये सब कर सकते हैं, संभव है कर सकते हैं? ये सब चीजें भी कितने लोग कर सकते हैं, ये आसन प्राणायाम आदि आदि ये सब चीजें सबके लिए ये फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए सब कहते हैं डॉक्टर साहब कोई शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ, कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ, कोई चीपेस्ट रास्ता बताओ। वास्तव में ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं कि कोई ऐसा ड्रग, कई तो कहते हैं डॉक्टर साहब एक गोली लिख दो ना थोड़ा पतला हो जाए, सचमुच ऐसा कोई गोली भी है नहीं। लेकिन एक चीज तो जरूर इस सत्य है कि रोज अगर आप चलेंगे कम से कम आधा घंटा तक फास्ट चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज चलना। इसमें आपके सारे शरीर के सब कुछ यूज होते हैं, ये परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपके सारे मसल सारे बोन सब कुछ यूज होता है। आप अगर साइकिलिंग करेंगे तो खाली पांव के मसल्स यूज होंगे, आप अगर स्विमिंग करेंगे तो हाथ का मसल्स यूज होता है, परंतु अगर चलेंगे तो सारे शरीर के सब कुछ यूज होता है। और वॉकिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम, आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। वॉकिंग इज मैंस बेस्ट मेडिसिन, सबसे बढ़िया मेडिसिन। और एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज ए ब्लेसिंग फॉर द होल डे, सवेरे सवेरे उठ के जो चलते हैं सारा दिन उसके लिए वरदान बन जाता है। तो इसलिए रोज सवेरे नाश्ता करने से पहले कम से कम 2 माइल चलना चाहिए। ये संभव है, सब चल सकते हैं, चल सकते हैं सभी जो रोज चलते हैं कम से कम आधा घंटा हाथ खड़ा कीजिए, रोज चलते हैं, वाह बहुत सभी, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं चलते हैं कम से कम यहां प्रोमिस करके जाइए। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सारा दिन इतना घर का काम करना पड़ता है फिर क्या एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज अलग चीज है, फिजिकल एक्टिविटी अलग चीज है। एक्सरसाइज उसे कहा जाता है, इट इज ए वॉलंटरी पर्पजफुल मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय तक एक ग्रुप ऑफ मसल्स को आप लगातार कुछ समय तक उसको मूवमेंट कर रहे हो, उसको एक्सरसाइज कहा जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं होता है। और एक मसल्स को, ग्रुप मसल्स को लगातार कुछ समय जब आप यूज करते हो, उसमें आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रोज कम से कम जो आधा घंटा चलता है, थोड़ा सा फास्ट चलता है, हफ्ते में अगर 5 दिन भी चलता है तो उसको ब्लड प्रेशर, शुगर कोई बीमारी नहीं होगी। पहले जमाने में हमारे दादा परदादा इतने इतने घी खा जाते थे, इतने इतने सब ये करते थे, दही आदि खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज हम खाते तो वही है लेकिन कुछ काम नहीं करते। एयर कंडीशन रूम में बैठे रहेंगे तो सारा घी सब क्या होगा, नस में जम नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप बताइए। वो बाहर में धूप में जब जाते थे, खेती बाड़ी करते थे, पिघल जाता था, और हम खा लिए घी इतना और बैठे हैं पूरा एकदम ठंडी में। तो जी, इसलिए एक्सरसाइज सबसे बहुत सुंदर, देखिए, जिसमें हमारे ब्लड ग्लूकोज, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे चर्बियां, कोलेस्ट्रॉल आदि सब ठीक हो जाता है। जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उनको पिल भी, इंसुलिन भी कम लेना पड़ता है। सत्ययुग त्रेतायुग में आप, मैं पूछता हूं, आप सत्ययुग में जो लक्ष्मी नारायण थे, कभी भी मंदिर में जाके उनकी मूर्ति देखिए, कितना सुंदर शरीर है, देखते ही दिल गदगद हो जाता है। क्या ये अनुलोम विलोम कपालभाति भास्त्रिका करते थे? कोई जिमखाना जाके डंबल बारबेल लेके करते थे? अच्छा, जब त्रेता युग में भी हम राम सीता को देखते हैं, इनका तन भी कितना सुंदर, एकदम फिट बॉडी, क्या ये लोग भी करते थे? नहीं करते थे ना। और जब कपर युग आया, द्वापर युग, तो भी हम खेती बाड़ी आदि करके पानी उठाते थे, ये सब करते थे, तो भी फिट थे, इतनी बीमारी नहीं थी। जब कलयुग आ गया, देख लीजिए क्या हो गया। जब कलयुग आ गया, हम सब बिल्कुल सिडेंटरी हो गए, जिसके कारण ऐसी हालत हो गई। और हम सभी ये सब साइंटिफिक चीजें यूज करते करते हमारी क्या दुरावस्था हो गई है, आप देख लीजिए। तो इसलिए हम घर में कुछ हो ना हो, एक वेइंग मशीन जरूर होना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए हमारा वजन सही है कि नहीं। आप जानते हैं आपका वजन सही कब कहा जाता है? जब हमारा हाइट सेंटीमीटर में मेजरमेंट कीजिए, सेंटीमीटर में जितना सेंटीमीटर हुआ उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है, उससे 100 माइनस कर दिया तो कितना रहा? तो मेरा वेट 80 किलो होना चाहिए, 2-4 किलो इधर उधर हो चलेगा। तो आप सभी अपना चेकिंग कीजिए। बहनों के लिए तो वास्तव में 105 माइनस करना चाहिए, लेकिन चलो छूट देते हैं 5 किलो दोनों को बराबर करने के लिए। तो 100 माइनस करके चेक कीजिए, जितना सेंटीमीटर उसमें माइनस 100 करके, तो हमारा बॉडी वेट अगर आइडियल है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। इस प्रकार हमारे ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट किलर है, एक खामोश जानलेवा बीमारी है। आप अगर चेक नहीं करेंगे, अचानक कभी एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी अचानक पैरालिसिस हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को 30 साल के बाद कम से कम साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। इस प्रकार ब्लड शुगर भी चेक करना चाहिए। ब्लड शुगर भी ऐसी एक बीमारी है, आज भारतवर्ष में डायबिटीज ऐसी फैलती जा रही है कि बात मत पूछिए। घर घर में डायबिटीज हो गया है, और सिटी में जाइए तो एवरी फोर्थ इंडिविजुअल इज ए डायबिटिक पर्सन। 20% 25% लोगों को डायबिटीज हो गया है। तो इसलिए जब तक आप चेक नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा शुगर का चेक कैसे करना है, क्या करना है। वास्तव में इसका विस्तार तो लेट हो गया है, मैं नहीं बता सकता हूं। यहां हमारे एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, कभी आएंगे तो इसका डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। इस प्रकार टेंशन से भी डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारी होती है, और लोग सिगरेट, शराब इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये कोई विधि नहीं है। जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहिए, 3 चीजें आप याद रखिए। एक तो फिजिकली एक्टिव लाइफ, देन बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, और तीसरा है स्ट्रेस फ्री लिविंग थ्रू मेडिटेशन। ये 3 चीजों को मैं कहता हूं ट्रायड ऑफ हेल्दी लिविंग। अगर जीवन में आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और बैलेंस डाइट लेंगे, और टेंशन फ्री लाइफ, और तो एडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर कंप्लीट हेल्थ। जो जा रहे हैं और 5 मिनट लगेगा, जस्ट बैठ जाइए, आप देखिए ये एंजॉय करेंगे, जस्ट 2 मिनट के लिए बैठिए। तो अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सभी यहां जैसे प्रातः जागरण सिखाया जा रहा है, जल्दी थोड़ा उठेंगे, सवेरे सवेरे प्रातः भ्रमण करेंगे, ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। एंड पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन यहां तो सिखाया जा रहा है, तो प्रैक्टिस मेडिटेशन, आपका सब प्रकार का टेंशन स्ट्रेस दूर हो जाएगा। यहां जो राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन, सब प्रकार का टेंशन से आप दूर हो जाएंगे। और सबसे मुख्य बात है सी नो एविल टॉक नो एविल। जो महात्मा गांधी तीन बंदर रखे थे याद है, वो तीन बंदरों के लिए शिक्षा नहीं है, वो मनुष्य के लिए शिक्षा है। लेकिन यहां हम सात बातें सिखाते हैं, तीन नहीं, ये तीन तो है ठीक है, और चार बातें कोई कह सकता है, बता सकता है और चार बातें क्या है? एक तो बुरी बातें देखूंगा नहीं, बुरी बातें सुनूंगा नहीं, बुरी बातें करूंगा नहीं, और चार बातें कौन सी? बुरी बातें सोचना भी नहीं है, बुरी बातें करना भी नहीं है, और दो बातें बुरी, हाँ बुरी चीजें खाने ही नहीं है, और एक लास्ट, और एक लास्ट गंदी किताबें पढ़ूंगा भी नहीं। सबसे नुकसानकारक चीज है गंदी नोवेल्स पढ़ना। आजकल बच्चे बिगड़ते हैं ये सब चीजें देख के, सिनेमा टीवी और ये गंदी नोवेल से। तो ये सात बातें जो बताया, ये जो जीवन में धारण करते हैं वही सुखी जीवन जीते हैं। और एडिक्शन फ्री लाइफ, आज क्या क्या छोटे बच्चे लेके, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें एडिक्ट हो जाते हैं फिर उनको छुड़ाना बहुत मुसीबत है। और पर्सनल हाइजीन, हम कैसे अपना शरीर को स्वच्छ रखें वो भी सीखना जरूरी है, तो ही हम तंदुरुस्त रखेंगे। एंड कीप फिट विथ म्यूजिक। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब चलना बड़ा बोर लगता है, हमारे आसपास में कहीं ऐसा जमीन नहीं है, जगह नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, कब चलूं, हमारे घुटने इतना दर्द है, चल नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं, ठीक है। म्यूजिक बजाने से आजकल देखिए बहुत सारे डांस क्लब्स भी खुल गए हैं जहां लोग म्यूजिक के साथ डांस सिखाते हैं जिससे वो फिट रहते हैं। लेकिन कितने लोग पैसा देके डांस क्लब में, डांस स्कूल में ज्वाइन करेंगे, वो भी संभव नहीं है। सतयुग त्रेता युग में क्यों फिट थे उसका राज मैं सुना रहा हूं कि सवेरे सवेरे जाके रास करते थे सभी, वहां कोई अनुलोम विलोम कपाल भाती नहीं करता था, वो सभी जाके वहां रास करते थे। जब रास करते हैं, नाचते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली एकदम मन बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है, तन भी ठीक हो जाता है। तो म्यूजिक के साथ देखिए ये कौन है, देखिए नृत्य कर रहे हैं, शिव बाबा की निशानी है, शिव बाबा खुद नृत्य कर रहे हैं, ये कौन है, देखो ये भी डांस कर रहे हैं, ये हमारी यादगार है। तो इसलिए कभी भी म्यूजिक बजता है तो बूढ़े बच्चे सब कान हिलना शुरू करते हैं और हाथ हिलना शुरू होता है ना, नहीं मनुष्य तो क्या जानवर भी नाचना शुरू कर देते हैं जब। तो इसलिए वॉक एंड बी हैप्पी एंड डांस एंड वॉक एंड बी हेल्दी डांस एंड बी हैप्पी। घर में बहुत सुंदर सुंदर, यहां इतने सारे सुंदर सुंदर गीत बजते हैं, आध्यात्मिक गीत बजाइए घर में, थोड़ा सा डांस कीजिए, देखिए खुश हो जाएंगे। परंतु कई लोगों को डांस करना भी शर्म आता है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन और एक चीज मैं बता देता हूं, दुनिया में हर कोई कर सकता है, हर कोई, मैं कहता हूं आप अगर यहां करेंगे पांच मिनट तो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। रेडी हैं सभी? अच्छा, हर कोई कर सकता है। और आप करके देखिए, देखना आपको कितना मजा आता है और बॉडी एकदम सब कुछ एक्सरसाइज हो जाएगा। आप सभी को, आप सभी कभी नेचुरोपैथी मसाज कराए हैं? कराए हैं? जिसको अनुभव है हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा लगता है मसाज करने के बाद? अच्छा, जिसको नेचुरोपैथी का आदत नहीं है, घर में बचपन में हमारे मां सभी को मसाज किए होंगे, अच्छा लगता था बचपन में? तो रोज अगर शरीर का एक बार मसाज करा देंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कौन मैसेज करेगा, मैं कहता हूं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी। तो अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल टू डिफीट डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिजीज, वेलकम टू ग्लोबल हॉस्पिटल, द होली स्थल फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर। हम हॉस्पिटल में एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एक प्रोग्राम जिसमें इट इज हेड प्रोग्राम होलिस्टिक अप्रोच फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, जिसमें चार दिन पेशेंट्स को भर्ती करके एक सुंदर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसका सारी कंप्लीट चेकअप, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, और उसको सवेरे उठ के एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन आदि भी सिखाया जाता है, शाम को भी ऐसा। तो एक पैकेज हम शुरू किए हैं, तो हॉस्पिटल आएंगे तो इसके बारे में जानकारी पाएंगे। परंतु अभी क्या करना है, मैं जो बताता हूं करिए, देखिए आपको कितना मजा आता है। ठीक है, करेंगे अभी सभी 5 मिनट। एक गीत बजाता हूं, उस गीत के साथ आपको सबको करना है, मैं जो करता हूं वो करिए, देखिए कैसा लगेगा। एक गीत के साथ यहां सबके लगाएंगे। यहाँ घुटने में जोर से मारिए, थोड़ा इसके पीछे यहाँ में अच्छी तरह से थपकी मारिए, ये शरीर जो दे रहा है तो थपकाना है तो ही ये ठीक चलेगा। यहाँ यहाँ ये एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है, आपके बॉडी का सारा प्रेशर पॉइंट इसमें दब जाएगा। खड़े हो गए सभी, खड़े हो गए सभी।
दिव्य गुणों की भर कर खुशबू फूल रूहानी बनना है,
साइड में यहाँ पेट में, पेट में नाभि के नीचे, नाभि के नीचे, ये पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर, ये दोनों साइड में, दोनों साइड में ऐसे जोर से मारेंगे तो एकदम ठंडी भाग जाएगी। ये पीछे, पीछे आगे झुके, ये किडनी के ऊपर, सीधा हुई,
गुण अब गुण को चित्त न धर के
यहाँ,
गुण अब गुण को चित्त न धर के सबको लगाना है
यहाँ। फिर से जोर से थोड़ा थपकी मारिए, सामने पीछे यहाँ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे ऐसे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, तीन चार, एक दो 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 तीन चार, फटाफट एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन। ये एक्सरसाइज सभी कर पाएंगे? संभव है? आपके फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, आपको कमर दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और इतना एक्टिव लगेगा आपको, ठंडी भी भाग जाएगी, पूरा बॉडी सर्विसिंग हो जाएगी। सवेरे 5 मिनट, शाम को 5 मिनट जरूर करना, वॉकिंग करना, हेल्दी रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सब रिफ्रेश हो गए? सब रिफ्रेश हो गए? वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली हम कैसे हेल्दी रहेंगे हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है।